मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण पर्व की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की हम लोग हमेशा की तरह दस लक्षण पर्व के निमित्त से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दक्ष लक्षण को पर्युषण भी कहते हैं। पर्युष का अर्थ होता है सुबह होना। सुबह तो सूरज के उगने से होती है संसार में, लेकिन जीवन में धर्म की सुबह कैसे हो, कैसे हम अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएं, इसके लिए पर्युषण पर्व आता है। पर्युषण का एक अर्थ और है अनुसंधान या कि खोज। संसार में भौतिक पदार्थों की खोज और अनुसंधान निरंतर चलता है, लेकिन जो खोज कर रहा है उसकी ही खोज करना, उस आत्मा के स्वरूप को खोजना, उसे प्राप्त करना, ये शिक्षा अपने को पर्युषण में प्राप्त होती है अगर अपन लेना चाहें तो। और तीसरे नंबर पर पर्युषण का अर्थ आराधना, पूजा, सेवा या उपासना होता है, जिसमें अपन भगवान जिनेंद्र के चरणों में आराधना या उपासना करके अपने जीवन में अपने परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयत्न करते हैं। दो तरह से हम इस पर्व को मना सकते हैं। एक तो अपने बाह्य आचरण को बदल करके, जो कि अपन करते ही हैं, लेकिन उस बाह्य आचरण को इन दस दिनों में बदलने का उद्देश्य अपने अंतरंग के परिणामों की निर्मलता है। सो उसकी भी अपने को तैयारी करनी चाहिए। देखो, बच्चों की परीक्षा होती है सो चार दिन पहले से परीक्षा की तैयारी करते हैं। घर में बेटी की शादी होती है तो चार दिन पहले से तैयारी करते हैं। अतिथि घर में आना हो तो चार दिन पहले से अपन अतिथि के आने का इंतजार करते हैं और वैसी तैयारी करते हैं। किसी यात्रा पर जाना हो तो उसके लिए अपन तैयारी करते हैं कि किस तरह अपन यात्रा करेंगे। इन सब सांसारिक कार्यों में उनको करने के लिए अपन पहले अपना मन बनाते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक ऐसे ही पर्वराज पर्युषण में मेरे जीवन में धर्म आवे, इस प्रकार की वाह्य में अपन तैयारी करें, करते हैं, लेकिन उस वाह्य तैयारी का उद्देश्य अपने अंतरंग में अपने मन को धर्म धारण करने के लिए तैयार करना है। कुछ थोड़ी सी वाह्य में क्रियाओं को करके अपन सोचते हैं कि हमने एक आसना कर ली, हमने उपवास कर लिया, हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, माला फेर ली और हमने खूब 10 दिन तक और स्वाध्याय इत्यादि करके धर्म कर लिया। लेकिन भाई, यह तो सिर्फ धर्म के साधन हैं, उपाय हैं। इन सब के माध्यम से मुझे अपने जीवन में वीतरागता और अहिंसा जो धर्म है वो स्वीकार करना है। इसके लिए ही ये सारी तैयारी अपन करते हैं। ऐसा विचार करके इन 10 दिनों में अपन अपने अंतरंग परिणामों को संभालने की, कषायों को जीतने की और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करें। उसके बिना तो धर्म जीवन में आता नहीं है। देखो, अगर किसी व्यक्ति को बहुत बढ़िया केसर डला हुआ हलवा खाना हो तो वो किसी से पूछता है कि किस प्रकार केसर से युक्त सुगंधित हलवा बनाया जाए, सो सब चीजें समझ लेता है हलवा बनाने की और फिर बाद में बनाता भी है, बनाता है, लेकिन खाते समय उसको रुचिकर नहीं मालूम पड़ता। तो पूछता है उस व्यक्ति से कि क्यों भाई, तुम तो कहते थे बहुत रुचिकर और बहुत स्वादिष्ट सुगंधित हलवा बनेगा, हमने बनाया लेकिन वैसा बना ही नहीं। तो वो व्यक्ति पूछता कि भाई, तुमने सामग्री क्या क्या डाली? भाई, तुमने जैसी सामग्री बताई थी हमने सब डाली। अच्छा, केसर भी डाली? हाँ, केसर भी डाली। अब तो उसके भी समझ में नहीं आया कि सब सामग्री थी, जितना हो सकता था बाहर से, गलती कहां रह गई कि स्वादिष्ट नहीं बन पाया हलवा। सो जाकर के उसके घर में देखता है कि केसर कहां रखी हुई थी। सो केसर तो हींग की डिब्बी में रखी हुई थी। अब बताओ, पहले उसी डिब्बी में हींग रखी थी जिसमें अब वर्तमान में केसर रख दी थी, उसी में से निकाल के हलवा में डाली थी, तो भैया केसर का स्वाद आएगा या कि हींग की बास आएगी? तो ऐसे ही अपन अपने अंतरंग में कलुषित परिणाम रखें, अविवेक पूर्वक अपनी क्रियाएं करें तो उन क्रियाओं का स्वाद अपने को कैसे आएगा, वो धर्म अपने जीवन में धारण कैसे कर पाएंगे अपन। ऐसा विचार करके अपन को अपनी कषायों को हटा करके, अपने अज्ञान को हटा करके धर्म धारण किया जा सकता है, ऐसा विचार करना चाहिए और धर्म को धारण करना चाहिए। उत्तम क्षमा पहला धर्म है। कैसे मेरे जीवन में आवे? उत्तम शब्द क्यों लगाया? ख्याति, पूजा, लाभ या किसी स्वार्थ से किसी के प्रति क्षमा भाव धारण कर लेना उत्तम क्षमा नहीं कहलाएगी। सहज भाव से अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करने में उत्तम क्षमा है। ऐसी तो भैया, जिस चाहे के प्रति अपने मन में जब क्रोध उत्पन्न होता है, सो बात बिगड़ने जावे, सो बात को संभालने के लिए अपना घाटा जान करके अपन क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन ऊपर पट्टी मांग लेते हैं, भीतर भीतर अपने मन में वह जो उत्तम क्षमा है वह धारण नहीं कर पाते। आज दिन ऐसी ही उत्तम क्षमा का, जो अपने जीवन का आत्म कल्याण करती है उसको धारण करने का दिन है। क्रोध के अभाव को ही क्षमा कहते हैं। जब अपने अंदर क्रोध ही नहीं उत्पन्न हो तब वास्तव में क्षमा धर्म है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओगन कहे अयानो, ऐसा अपन दस लक्षण की पूजा करते समय भगवान के सामने कहते भी हैं कि मुझे कोई अपशब्द भी कह दे तो मेरे भीतर उसके प्रति कलुषित भाव ना उत्पन्न हो, क्रोध का भाव उत्पन्न ना हो, मैं उसे अज्ञानी जान करके मुझे नहीं जानता है इसलिए तो मेरे ऊपर क्रोधित हो रहा है, मैं क्षमा भाव धारण करूं तो मेरी क्षमा मेरे आत्म कल्याण में निमित्त बनेगी और उत्तम क्षमा कहलाएगी। लेकिन क्रोध तो आए बिना रहता नहीं, भीतर तो क्रोध कषाय पड़ी हुई है, सो क्षण भर में बाह्य निमित्त पा करके और वो उदय में आ जाती है और अपन क्रोध कर लेते हैं और ऐसा जानते हैं कि क्रोध तो हमने ठीक किया है और थोड़ा हिस्सा तो किया है और सब तो करते हैं, कौन मैं नहीं किया है, ऐसे अपन आर्गुमेंट अपने आप को दे करके सांत्वना दे देते हैं। लेकिन विचार करें कि क्रोध की तासीर क्या है, कषाय की तासीर क्या है, ये बहुत अल्प मालूम पड़ती हैं, लेकिन ये बढ़ करके अपने जीवन का घात करने में कारण बन जाती हैं। इन्हीं को सब जीव हमेशा से कषायों को करते आ रहे हैं, इसीलिए तो संसार में जन्म मरण और का दुख उठा रहे हैं। सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, यह तो ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके उनके स्वभाव को जाने अपन कषायों के, उनको जीतना चाहते हैं तो उनसे हानि क्या है इसको जाने। स्वभाव कैसा है कि जैसे कोई उधार पैसे लेता है, किसी को थोड़ा सा घाव हो जाता है या कि थोड़ी सी घास फूस में अग्नि जरा सी लग जाती है, दिखती तो ये सब चीजें हैं अल्प अत्यंत कम, लेकिन ये बढ़ जावे अगर तो विनाशकारी हो जाती है। ऋण अपन लेते हैं, उधार लेते हैं, सो थोड़ा हिस्सा तो जान पड़ता है कि अपन को लेना पड़ रहा है, थोड़ा हिस्सा तो ले रहे हैं अपन। लेकिन जो व्यक्ति उधार लेता है उससे पूछो कि जिंदगी भर उधार चुका पाए, नहीं चुक पाता भैया। और संसार का धन पैसे का उधार तो चुक जाए सो चुक जाए, लेकिन वो जो कर्मों का उधार अपन निरंतर करते रहते हैं वो अपन कहां चुका पाते, उनको कहां काट पाते हैं कर्मों को। ऐसा विचार करके कि ये बहुत थोड़े से दिखने के बाद भी बहुत बड़े होकर के मेरे जीवन का बिगाड़ कर सकते हैं, मैं इन्हें अपने जीवन से दूर ही रखूं। ऐसे ही घाव छोटा सा दिखाई पड़ता है, अगर थोड़ी सी अपन असावधानी कर ली में तो घाव बढ़ करके और इतना बढ़ जाता है कि कौ जहां पर है उस अंग को ही काटना पड़े। पैर में हुआ है घाव तो नासूर बन गया और पैर ही काटना पड़ा प्राण बचाने के लिए। ऐसे ही कषायों का स्वभाव है। अग्नि थोड़ी सी जान पड़ती है कि अरे जरा दो चार कणों में तो आग लगी हुई है, अल्प है, बुझ जाएगी, लेकिन नहीं भैया, वो अगर तृण में लगी हुई आग भी जरा सी है और बढ़ जाए हवा चलने से तो पूरे महल को जलाने में कारण बन सकती है। ऐसा ही मेरे अंदर जो कषाय भाव है उनका भी यही स्वभाव है, ये दूसरे की तो हानि करते हैं सो करते ही हैं, मेरे जीवन को भी तहस नहस कर देते हैं। ऐसा अपने मन में विचार आना चाहिए, आता नहीं है। क्यों? अपन मन को हानि सामने नहीं दिखाई पड़ती है। कर्म जब अपना फल देते हैं तब उनके फल में अपन को मालूम पड़ता है कि अरे मैंने कर्म खोटे किए थे जिनका फल मुझे प्राप्त हो रहा, करते समय तो नहीं मालूम पड़ता। एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था, स्नान करने वो जाता था और जहां से रास्ते में से गुजरता था एक घर के नीचे से, तो वहां से घर पे से ऊपर से कोई उसके ऊपर थूक देता। जब पहली बार उसको थूका तो थोड़ा तो मन में विचार आया कि कारण क्या है, जो भी हो क्या करना। उसने अपने दुपट्टे से थूक पहुंचा और आगे बढ़ गया। ठीक, रोज का क्रम बन गया, 8 दिन हो गए। वो स्नान करने जाता और वहां से गुजरता तो उसके ऊपर घर में से कोई थूक देता, वो पहुंचता और आगे बढ़ जाता। जो उस मकान के नीचे दुकानदार था वो उसने भी रोज देखा। सो एक दिन उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारी वजह से इन घर के लोगों को कोई परेशानी है क्या? भाई मैं तो नहीं कह सकता उन्हें मेरे से क्या परेशानी है। अरे नहीं, तुम्हें पता करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर थूकते हैं, क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? उसने कहा कि भाई मुझे क्या परेशानी, मुझे तो जरा सा थूक गिरा था से पहुंच करके आगे बढ़ गया, लेकिन मैं तो विचार करता हूं कि उनको कितना मेरे ऊपर थूकने के लिए परेशान होना होता होगा। अच्छा, मेरे निकलने का समय मिलाते होंगे कि अब निकल रहा होगा। और इतने ही नहीं, सामने आते देख करके बहुत सारा थूक मुंह में इकट्ठा करना पड़ता होगा और फिर एंगल मिला करके मेरे ऊपर थूकना पड़ता होगा कि ठीक ठीक गिरे, नहीं तो कहूं आजू बाजू गिर जाए। तो इतनी सारी परेशानी तो सामने वाले को मेरे ऊपर थूकने के लिए करना पड़ती, मुझे क्या करना, मुझे तो उस थूक को पहुंच करके आगे बढ़ना है। भाई कषायें अपना ही अहित नहीं करती, वो दूसरे का ही अहित नहीं करती। जरूरी नहीं है कि कषाय से दूसरे का अहित हो ही, मेरा अहित तो नियम से होगा। मैं दूसरे पर क्रोध करूं, वो विचलित हो क्रोध से या नहीं हो, लेकिन मैंने जो क्रोध के भाव किए उससे तो मैंने अपनी आत्मा का पतन उसी क्षण कर लिया। ऐसा विचार, ताकि क्रोध आए ही नहीं अपने भीतर, आने लगे तो ऐसे ज्ञान के द्वारा अपन उसको जीत सके। क्रोध से बचने के लिए सबसे पहले आचार्यों ने लिखा कि आत्मज्ञान होना चाहिए, अनाशक्ति होना चाहिए, बहुत अधिक मन वचन काय की सक्रियता नहीं होनी चाहिए। लगे हैं निरंतर मन वचन काय के द्वारा कार्य करने में तो अनाप शनाप कार्य में क्रोध के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम अपनी अनावश्यक मन वचन काय की सक्रियता को रोक के रखें। जितना जो आसक्त होगा उसकी आसक्ति पूरी नहीं होने पर उसे क्रोध आएगा, तो कहते अनाशक्त होकर के जीवन जियो। जितना अज्ञानी होगा उतना ज्यादा क्रोध होगा, तो कहती नहीं भाई, आत्मज्ञान पूर्वक जीवन जियो। अपनी मनोवृत्तियां और अपने संस्कार भी क्रोध में कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा क्रोध तो कर ही रहा हूं ऐसा जान करके अपन कर लेते हैं और वो संस्कार अपने भीतर पड़ जाता है और पड़ता ही चला जाता है। सो फिर अपन मजबूर हो जाते अपनी कमजोरी के कारण और जरा जरा सी बात में वो क्रोध कर बैठते हैं। अपने ही संस्कार से, अपनी ही मानसिकता नेगेटिव, निरंतर बुराइयों के बारे में ही अपन की देखने की आंख बन जाती है, खोटा ही विचार अपने अंदर आने लगता, जिसे प्रीजुडिस कहते हैं। पूर्व से ही आपने दूसरे के बारे में अपनी धारणा बना ली, खोटी धारणा बना ली, तो आपके भीतर उस व्यक्ति के निमित्त से क्रोध तो उत्पन्न होगा ही। तो हमेशा अपनी मनोवृत्ति और संस्कार इन दोनों को संभालें अगर, तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी उतना क्रोध आएगा, सो कम से कम अपेक्षाएं रखें। देखो, जितनी अपेक्षाएं अपनी होती हैं और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर जिससे अपनी अपेक्षा थी, क्रोध अपने आप उत्पन्न होने लगता है, भीतर में क्रोध का उदय आ जाता है निमित्त पा करके। एक बेटा अपने पिता के साथ जा रहा है, पिताजी ने चश्मा निकालने के लिए जेब में हाथ डाला और चश्मा निकाल के पहना, उतने में उनका चश्मे के साथ रखा हुआ 10 रुपए का नोट वो भी गिर गया। रास्ते में जा रहे थे, ध्यान नहीं रहा। पीछे जो व्यक्ति था ईमानदार रहा होगा, उसने वो 10 रुपए का नोट गिरते देख लिया कि सामने वाले की पॉकेट से गिरा है, उसी का है, सो झट से उठा करके और आगे बढ़ करके उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा 10 रुपए चश्मा निकालते समय गिर गया, ये अपना रख लो। सो उस व्यक्ति को तो 10 रुपए चूंकि उसने दिए थे गिरने पर, सो उसे धन्यवाद दिया, लेकिन इसके साथ ही अपने बेटे को नाराज होने लगे, तुम हमारे संगे चल रहे और इतने नहीं देख सकते हमारे 10 रुपया गिर गए, अब बताओ। अपेक्षा थी तुमसे कि तुम तो उठाओगे, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया और दूसरे व्यक्ति ने ध्यान देकर के उठा लिया। ऐसे अपने भीतर क्रोध आ जाता, और जरा देर में चले फिर उनको पसीना आया, सो रूमाल निकाला, सो फिर 10 रुपए का नोट गिर गया। बेटा तो सावधान था, उसने फौरन उठा करके पिताजी को दे दिया, पिताजी ने धन्यवाद तक नहीं दिया। अपेक्षा जिससे होती है पूरी होने पर अपने अंदर धन्यवाद का भाव नहीं आता, और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो कलुषता आए बिना नहीं रहेगी, क्रोध आ जाए। सो भैया, जिसकी जितनी कम अपेक्षाएं हैं वो उतना कम ही क्रोध में गिरेगा, क्रोध की तरफ उसका भाव प्रवर्तित ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं, उसकी प्रवृत्ति अपने आप शांत हो जाएगी। इस प्रकार हम चाहें तो अपने भीतर जो क्रोध कषाय है उसे हम जीत सकते हैं, अपने पॉजिटिव सोच अपनी मनोवृत्ति के कारण। एक व्यक्ति चेतना को संस्कारित करता है आत्मज्ञान के द्वारा, अपनी मनोवृत्ति को सुधार करके, तो अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। जैसे कि सुकरात के जीवन का आता है कि उनके कोई उनके प्रति शत्रुता रखता था। देखो, महापुरुषों से भी लोग शत्रुता रख सकते हैं, महापुरुष रखें चाहे न रखें, क्यों क्रोध का उदय आ गया, कषाय का उदय आ गया तो रख सकते हैं। सो व्यक्ति एक था जो कि सुकरात इतने पहुंचे हुए थे, फिर भी सज्जन पुरुष थे, पर उन सज्जन के प्रति भी जो दुर्जन होगा वो तो कषाय भाव रखेगा ही, सो शत्रुता रखता था। सुकरात को मालूम पड़ा कि फलाना व्यक्ति मेरे से बदला लेने के लिए निरंतर विचार करता रहता है, लोगों से भी कहता है कि मैं जब तक सुकरात को नीचा नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। सो सुकरात ने भी कहना शुरू किया कि जब तक उसे अपना मित्र नहीं बना लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखो, अपन होते तो अपनी मनोवृत्ति कैसी होती कि हम भी बदला लेंगे, और अपनी मनोवृत्ति संभाल करके और शत्रुता को ही नष्ट करने का विचार, शत्रु को नष्ट करने का नहीं, शत्रुता को नष्ट करने का विचार अपने भीतर आ रहा, सो अपना कल्याण हो रहा दूसरे का। राम तीर्थ थे विदेश में यात्रा के लिए गए, सो जब फ्लाइट से नीचे उतरे और यहां वहां देख रहे थे तो वहीं पर किसी फॉरेनर ने उनसे पूछा कि क्या किसी मित्र का इंतजार कर रहे हैं, यहां कोई आपका मित्र है या नहीं है। तो फौरन राम तीर्थ ने कुछ भी विचार ना करते हुए उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख के कहा कि आप ही तो मेरे मित्र हैं। बस इतने से कहने मात्र से जब तक वो विदेश में रहे उस व्यक्ति ने उनका पूरा ध्यान रखा कि मेरा मित्र है। भैया, मित्रता के लिए आप हाथ बढ़ाओ या शत्रुता के लिए हाथ बढ़ाओ, ये आपके ऊपर आपकी मनोवृत्ति पर निर्भर है। हमें अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित करके क्रोध को जीतने के लिए हमेशा प्रेम भाव सबके प्रति रखना चाहिए, सौजन्य का भाव हमेशा रखना चाहिए। एक और उपाय है क्रोध को जीतने का, सबके प्रति प्रेम भाव और सौजन्य का भाव। जिसके प्रति अपने मन में प्रेम का भाव होता है उसके प्रति मन कलुषित होता है, क्रोध आता है क्या? नहीं आता। और प्राणी मात्र के प्रति जिसका प्रेम हो जाए, जहां जहां सांसें धड़कती हैं सबके प्रति मेरा सौजन्य है, ऐसा भाव आ जावे तो फिर उसके क्रोध कषाय उदय में आकर के भी निमित्त नहीं मिलने से, और क्या प्राणी को कषायवान बना सकती है? भाई, ऐसे अपन क्रोध को आसानी से जीत सकते हैं। एक चीज और है क्रोध को जीतने की आसान सा उपाय, कि हम सामने वाले के क्रोध में ईंधन न डालें, उसे और अधिक बढ़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि वातावरण को इतना हल्का बना दें कि जिससे सामने वाले के भी क्रोध कषाय पर पानी पड़ जाए, शांत हो जाए वो अग्नि, वो ज्वाला जो क्रोध की उसके भीतर जल रही है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर थे, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, उनके पिताजी बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी मां जल्दी से क्रोधित हो जाती थी। एक बार पिताजी घर में आए, थोड़ी देर हो गई, मां ने रसोई बहुत पहले बना ली थी, सो इंतजार करते करते थक गई, क्रोध आ गया पिता को देखते ही कि अब आए हो। उनको जितनी बातें हो सकती थी अपशब्द, सो थाली परोसती जाती उनके सामने और सारे अपशब्द कहती जाती उनसे, सो चुपचाप, विश्वनाथ उनका नाम था, सो चुपचाप सुनते रहे और पूरी थाली परस गई। सो फिर बाद में धीरे से थाली उठा करके और अपनी जो जीवन साथी थी उनके माथे पर लगाने लगे, तो उनको और गुस्सा आ गया कि क्या करते हो, अच्छे से एक तो देर से आए और खाओ ठीक से, सब ठंडो हो गए। बोले भगवान, सारा ठंडा हो गया और गर्मी तो तुम्हारे माथे में इसे गर्मा कर रहे थे। अब देखो सामने वाले को भी हंसी आ जाएगी, वातावरण हल्का हो गया और प्रेम पूर्वक अपना कार्य या तो क्रोधित होकर के करो या कि प्रेम पूर्वक अपन अपना कार्य कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल कि क्रोध है उसको भी अच्छा काम मिल गया, सो क्रोध आता सो एक दरवाजे पर कील ठोक देता, पूरा दरवाजा कीलों से भर गया, उसे बड़ी शर्म आई कि हमने तो क्रोधा कर लो कि सबरो दरवाजा बिल्कुल कीलों से भर गया। अब उसने अपने पिता से कहा कि पिता, अगर मैं क्रोध नहीं करूं तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम क्रोध नहीं करो तो एक कील निकाल करके अलग कर देना उस दरवाजे में से। उसके मन में तो चार्म क्रिएट हो गया कि मैं जैसे सारे दरवाजे को कीलों से भर दिया था ऐसे ही सब कीले क्रोध ना करके निकाल दूंगा। और इसी में उसने जब जब क्रोध के अवसर आए, क्रोध को जीत करके और फौरन जाकर के एक की निकाल दी। सो एक दिन आकर के अपने पिता से कहा कि पिता, सारा दरवाजा कीलों से रहित हो गया। पिताजी ने बहुत पीठ ठोकी और कहा, बहुत अच्छा किया भाई तुमने, तुमने अपने क्रोध को जीत लिया। एक बात मैं तुमसे कहूंगा अवश्य, चलो मेरे साथ। वो दरवाजे तक ले गए और दरवाजे को दिखाकर उन्होंने कहा कि देखो, कीलें तो सब निकल गईं, लेकिन दरवाजे पर निशान तो बाकी हैं। ऐसे ही जब हम क्रोध कर लेते हैं, बाद में क्षमा भाव धारण कर ले, लेकिन वो जो क्रोध का संस्कार है वो तो निशान बन ही गया, उसका फल तो पाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अपन जब अपने भीतर कषाय भाव जागृत हुए तो विचार करें कि अरे, मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा, सो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा भाव आने से मेरी आत्मा का पतन तो हो ही गया, निशान तो उस पर पड़ ही गए। भैया, इस तरह से अपन क्षमा भाव धारण करने के लिए जीतने का प्रयत्न करें। लिखा हुआ है उसमें, सति अपि सामर्थ्यम अपकार सहनम क्षमा। सामर्थ होते हुए भी प्रतिकार की, दूसरे के किए गए अपकार को सहन करना, ये कहलाती क्षमा। आप हमारे प्रति उपद्रव करो, हमारे भीतर आपके उपद्रव के प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, लेकिन हम आपके प्रति अपना चित्त कलुषित नहीं करेंगे, आपके प्रति तो क्षमा भाव ही धारण करेंगे। ऐसा क्षमा धर्म है। अपने को होना तो ये चाहिए कि जो जितना सामर्थ्यवान है वो ही क्षमा भाव धारण करता है, कर सकता है। अपने भीतर की सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए। पहलवानी को सामर्थ्य नहीं कह रहे हैं, क्रोध को जो जीत सके वही सामर्थ्यवान है। जो जितना सहनशील हो सके, जो जितना सहिष्णु हो सके, सहिष्णुता का अभ्यास करना ही क्षमा धर्म धारण करना है। एक बार एक संत थे, वो जुलाहे का काम करते थे, धोतियां बनाते थे हाथ से और बेचते थे। उनको बड़े शांत परिणाम थे, क्रोध नहीं आता था, नाराज नहीं होते थे। राजा का बेटा खोटी संगति में पड़ करके बिगड़ गया। सो उन सब नवयुवकों ने सोचा कि इस आदमी को क्रोध दिला के रहेंगे। देखो, दुर्जन व्यक्ति के मन में तो सज्जनता खटकती है कि हम क्यों नहीं बन पाए सज्जन, सामने वाला क्यों सज्जन है, ये चीज उसको चैलेंज बन जाती है। सो उन राजा के पुत्र ने अपने और नवयुवकों के साथ में एक दिन उस संत की दुकान पर पहुंच करके धोती खरीदने के लिए कहा कि हम धोती खरीदना चाहते हैं, आप दिखाओ। सो एक धोती उन्होंने पास भी कर ली कि ये हमें लेना है, इसकी कीमत बताओ। सो संत ने उसकी कीमत बता दी और जैसे ही उन्होंने कीमत बताई 2 रुपए, सो इन्होंने उस धोती के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े की कीमत पूछी कि आप कितने की कीमत। सो संत ने बिना किसी क्रोध के कहा कि 1 रुपए। आधी धोती हो गई तो 1 रुपए कीमत हो गई। आधी धोती की कीमत 1 रुपया, तो उसने उस आधी धोती की भी आधी कर दी और फिर पूछा कि कितने कीमत। 1 रुपए थी तो अब 8 आने बची। और ऐसे करते करते उस पूरी धोती को फाड़ करके कीमत पूछता रहा और आखिरी में चिंदी चिंदी हो गई धोती की। तब उसने कीमत पूछी, तब भी शांत भाव से उन संत ने कहा कि भाई, अब तो उसकी कोई कीमत नहीं रही, अब कौन खरीदेगा उसे, चिंदी चिंदी हो गई धोती। वो बहुत पानी पानी हो गया कि मैंने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और आपने चुपचाप उसे सहन किया। सो क्षमा मांगने लगा वो राजा का बेटा और कहा कि आप अपने पूरे 2 रुपए ले लो, मैंने आपका नाहक में इतना समय बर्बाद किया और धोती भी फाड़ दी मैंने। संत ने कहा कि तुम धोती की कीमत क्या चुका पाओगे? धोती की कीमत चुकानी है तो जाओ खेतों में काम करने वालों से पूछो कि कपास उगाने में कितनी मेहनत की, और कपास उगा करके पोनी बना करके सूत काटने वालों से पूछो कि कितनी मेहनत से तुमने सूत काट करके और ताना बना बुन करके मुझसे पूछो कि कैसे मैंने धोती बनाई थी, इसकी कीमत तुम ऐसे नहीं चुका सकते 2 रुपए दे करके। अब बहुत मूल्यवान है। ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति तो उसका जीवन बदल गया कि हमें तो शिक्षा मिल गई, अपकार सहन करके भी सामने वाले को अपकार करने का क्या पनिशमेंट है ये अपने आप एहसास करवा दिया। छोटा मोटा पनिशमेंट नहीं है, तुमने कितने लोगों का जो कार्य था उसे नष्ट कर दिया, उनका समय नष्ट कर दिया। देखो पारसनाथ भगवान ने क्षमा भाव धारण किया, कितने सामर्थ्यवान थे, कर सकते थे प्रतिकार कमट का क्षण भर में। सौधर्म इंद्र खड़े हुए हैं, जरा सी आज्ञा देते तो कहां लगता कमट, लेकिन नहीं, 10 भाव तक कमट उपद्रव करता रहा, लेकिन सामर्थ्यवान पारसनाथ भगवान ने क्षमा भाव धारण किया और उस क्षमा भाव से अपने परिणाम निर्मल करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उनके परिणामों की निर्मलता देख करके कमट का भी भाव बदल गया और उसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। भैया वास्तव में तो अपन अपनी इस क्रोध कषाय को जीत कर स्वयं अपने आत्मा का कल्याण करने वाले क्षमा धर्म को धारण करके और दूसरे को भी क्षमा भाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज के दिन इसी सब बातों को अपन ध्यान में रखकर क्षमा भाव धारण करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में निष्कंटक बोता हूँ। निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल बरसा की घड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादा क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम की अभिनश्वर मणियां। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
उदक चंदन लेने के लिए फिर एक साथ बैठे हुए हैं।
सिद्ध करना है, हमें विशिष्ट दिनों में अपने जीवन में जिन चीजों को हमने श्रेष्ठ माना है उनको प्रकट करने की कोशिश भी करनी है। ये 10 दिन हमारे लिए प्रयोग के दिन बन जावे और इन 10 दिनों में हम अपने जीवन को कुछ इस तरह की गति दे सकें कि शेष जो जीवन के दिन हैं वे भी ऐसे ही और इतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे ये 10 दिन हम बिताएंगे। असल में हम लोग इन 10 दिनों को बहुत परंपरागत ढंग से व्यतीत करने के आदि हो गए हैं। हमें कुछ थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए। घर में बिटिया की शादी होती है, उसकी तैयारी करते हैं। घर से 4 कदम बाहर जाना हो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। विद्यार्थी अगर एग्जाम सामने आ गया है तो उसकी तैयारी करते हैं। मेहमान घर में आना हो तो भी हम तैयारी करते हैं। और हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का अगर कोई पर्व, कोई त्योहार या कि कोई अवसर हमारे जीवन में अगर आए तो हमें उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। हम करते हैं तैयारी, लेकिन वो तैयारी बहुत बाहरी होकर के रह जाती है। काश हम थोड़ी सी भीतर की तैयारी भी कर ले। बाहरी तैयारी ये है कि हमने पूजन कर ली, बाहरी तैयारी ये है कि हम आज एक आसना कर लेंगे, अगर सामर्थ होगी तो उपवास कर लेंगे, अगर और सामर्थ होगी कोई रस छोड़ देंगे या कि हम सब्जियां छोड़ देंगे। ये जितनी तैयारियां हैं ये सब बाहरी तैयारियां हैं, ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये तैयारियां तो कई बार हम कर चुके हैं और ऐसे हमारे जीवन में अवसर कई बार आ चुके हैं दशलक्षण पर्व मनाने के, लेकिन इस 10 दिन के बाद हमारी अपनी लाइफ स्टाइल में यदि कोई चेंज ना हो तो बताइएगा इन 10 दिनों को हमने जिस तरह से अच्छा मानकर व्यतीत किया है उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ा। ये प्रश्न हमें किसी दूसरे से नहीं पूछना है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा ही मत समझिए। ये प्रश्न हम सबके भीतर उठना चाहिए और इसका समाधान उत्तर नहीं, उत्तर तो लॉजिक से दिए जाते हैं, समाधान भावनाओं से प्राप्त होते हैं। इनका समाधान हमारे भीतर क्या उठता है, क्या हमारी ऐसी कोई तैयारी है कि जब क्रोध का अवसर आएगा हम क्षमा भाव धारण करेंगे, जब कोई अपमान का अवसर आएगा फिर भी हम अपनी विनय से विचलित नहीं होंगे, जब कहीं कोई कठिनाई होगी तब भी उसके बावजूद हमारी सरलता बनी रहेगी, जब मलिनताएं हमें घेरेंगी तब भी हम अपनी पवित्रता को विस्मृत नहीं करेंगे, जब तमाम लोग झूठे रास्ते पर जा रहे होंगे तब भी मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा, जबकि मेरे भीतर पाप करने का मन होगा मैं अपने जीवन के अनुशासन और अपने जीवन के संयम को बरकरार रख सकूंगा, जब मुझे इच्छाएं घेरेंगी मैं उन इच्छाओं को जीत सकूंगा, जबकि मैं सारी दुनिया में जोड़ने की होड़ में शामिल हो जाता हूं क्या मैं छोड़ने की होड़ लगाऊंगा मैं शामिल हो पाऊंगा, जबकि मैं अभी दुनिया भर की चीजों को अपना मानता हूं एक दिन ऐसा आएगा मेरे जीवन में कि मेरे अपने को भी मैं सबका मानूंगा, जबकि मैं इतना उदार हो सकूंगा कि किसी के प्रति भी मेरे मन में दुर्व्यवहार नहीं होगा। क्या इस तरह की कोई तैयारी इन 10 दिनों में हमें करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई तैयारी एक बार भी हम इन 10 दिनों में कर लेंगे, एक बार अपने जीवन के चक्र को हम गति दे देंगे तो शेष पूरे वर्ष के 355 दिन इन 10 दिनों के अनुसार ही रेगुलेट होंगे। अभी तो होता यह है कि 355 दिन जितनी बेतरतीबी से गुजरते हैं उस सारी बेतरतीबी को हम इन 10 दिनों में रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद 10 दिन जैसे ही व्यतीत होते हैं तो 11वें दिन हमारे अंदर कैसी कशमसाहट मस्ती है उन सब सीमाओं को उन सब मर्यादाओं को तोड़ देने की जिनको कि हमने खुद अपने चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए बांधा था लगाया था। ये बात हमें अवश्य विचार करनी चाहिए। आचार्य महाराज ने एक बहुत छोटा सा उदाहरण आहार जी में दिया था पर्युषण पर्व के पहले। क्या हुआ, किसी के घर में कोई मेहमान बन के गया तो वहां पर उनके यहां पर केसर का हलवा बना था। हाँ मतलब केसर डाल के हलवा, नहीं तो आप केसर का हलवा बना लेंगे क्या, ऐसे करेंगे क्या? तो वहां उनको बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने सोचा कि अपन भी अपने घर में बनाएंगे। तुमसे पूछ दिया कि आपने कैसा करा था, क्या क्या चीज मिलाई थी, तुमने सब बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज और फिर हमने उसमें केसर भी डाली थी तो इसलिए इतना स्वादिष्ट बना। उन्होंने कहा ठीक अपन भी बनाएंगे घर में, बनाया उन्होंने घर में, लेकिन कुछ मजा नहीं आया, वो खा ही नहीं गया। अब कैसे करें, एक दिन रस्ते मिल गए, कहा कि आपके यहां पर जो केसर का हलवा खाया था वो तो बहुत अच्छा लगा था लेकिन हमने बनाया तो ढंग का ही नहीं बना, आप कभी हमारे यहां तो आइए थोड़ा बना करके बता दीजिएगा। ठीक अभी चलते हैं, अभी देखते हैं आपका सामान वामान आपने कैसे करा था, देखा जा करके सब एकदम सब ठीक था, केसर डाली थी, ना केसर डाली थी बिल्कुल बढ़िया लाए थे हम, तो वो कितने रुपए तोले मिलती है वो वैसी वाली लाए थे। तो काहे में रखी थी केसर, काहे में रखी थी, डिब्बे में रखी थी और काहे में रखी थी, तो लाने मेरा डिब्बी, तो वो केसर जिस डिब्बी में रखी थी वो डिब्बी लाए। समझ में आ गया कि गड़बड़ कहां है, इस डिब्बी में पहले क्या रखा था, पहले क्या रखा था, पहले आपने पहले से बता दिया, जिनको नहीं मालूम है तो उनको कैसे होगा, ये चीज सबको मालूम है कि वो केसर क्यों बिगड़ गई, क्योंकि जिसमें रखी थी उसमें पहले से बदबूदार हींग रखी थी। और ये बात हमें क्यों नहीं मालूम है कि धर्म का सेवन 10 दिनों तक हम यदि करेंगे और जिस डिब्बी में हम धर्म को रखेंगे वो डिब्बी पहले से कषायों की बदबू से भरी होगी तो आनंद नहीं आएगा। इतनी बात क्यों नहीं समझ में आई, अभी तक क्यों नहीं आई? चलो अभी तक नहीं आई कोई बात नहीं, आज आ गई हो अगर तो भी अपना काम चल जाएगा। हमें ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए। इतनी श्रेष्ठ जो वस्तु हमें प्राप्त हुई परंपरा से, 10 प्रकार के धर्म के स्वरूप हमें बताए गए, उसको हम धारण करें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी कषायों को भी धीरे धीरे कम करते जाएं। भैया वास्तव में धर्म कहीं से अपने भीतर इन 10 दिनों में लाने की प्रक्रिया नहीं करनी है, बल्कि हमारे भीतर जो विकृतियां हैं उनको जैसे जैसे हम हटाते चले जाएंगे धर्म आपो आप हमारे भीतर प्रकट होता चला जाएगा। वहां तो डिब्बी में से हींग हटा करके फिर बाद को केसर रखनी पड़ती है, ऐसा यहां नहीं है। यहां तो जैसे ही हम अपने भीतर की कषायों को हटाते हैं वैसे ही धर्म वहीं के वहीं हमारे जीवन में आना शुरू कर देता है। अणथोवम वणथोवम अग्गीथोवम कषाय थोवम च, ये सब चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि सावधान रहना, ये छोटी छोटी और थोड़ी दिखने वाली बातें बढ़ करके इतनी बढ़ जाती हैं कि सारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी से उधार लेता है तो थोड़ा सा तो है ही, ज्यादा थोड़ी है, चुकता कर दूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी उस उधार को, उस ऋण को चुकता नहीं कर पाता, थोड़ा होने के बावजूद भी। घाव छोटा सा मालूम पड़ता है, लेकिन अगर लापरवाही हो जावे तो बढ़ करके नासूर बन जाता है और जिस हिस्से में हुआ है उस हिस्से को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, अग्नि जरा सी चिंगारी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर किसी महल में वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाए तो पूरे महल को जला करके नष्ट कर सकती है। ठीक इसी तरह जैसे कि ऋण, जैसे कि व्रण घाव, और जैसे कि तीसरी चीज मैंने क्या कही, अग्नि, ये तीनों चीजें बहुत थोड़ी मालूम पड़ती हैं, लेकिन इनके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अधिक होते हैं। ऐसे ही कषाय भी थोड़ी सी मालूम पड़ती है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अधिक होते हैं, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसमें लापरवाही हमारे जीवन को नष्ट कर देगी। जैसे कि बट का वृक्ष सबने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज देखें अपन, कितना खसखस के दाने बराबर होता है और वृक्ष इतना बड़ा है। जैसे कि डॉक्टर की इंजेक्शन की जो सिरिंज, उसका टो जो होता है कितना बारीक होता है, लेकिन हमारे भीतर अगर वो प्रवेश कर जाए तो 10 और 20 ml तक ड्रग भीतर इंजेक्ट हो जाती है। उतनी सारी दवाई उतनी बारीक सी नीडल से। ठीक ऐसे ही है इन कषायों का स्वभाव, अगर उनको स्पेस मिलता चला जाए तो ये फैल करके है, खसखस के दाने के बराबर, लेकिन फैल करके बट वृक्ष के समान बहुत बहुत बड़े एरिया को कैचअप कर लेती है, हमारे पूरे जीवन को ये कैचअप कर लेती है, हम इनकी ग्रिप में आ जाते हैं और फिर हमारी जरा सी देर की कमजोरी हमें मजबूर बना देती है इन कषायों को करने के लिए। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। स्वभाव है हमारा क्षमा भाव धारण करना, लेकिन उस स्वभाव को विकृत करने वाली चीजें कौन सी हैं, इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्रोध ना आवे, वास्तव में तो क्षमा सबसे श्रेष्ठ यही है। क्रोध आ जाने के बाद उसे कौन कितनी जल्दी खत्म कर देता है, यह भी उसकी क्षमा है। क्षमो धातु से क्षमा शब्द बना हुआ है, जिसके मायने सामर्थ और क्षमता, और सचमुच सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए ही यह गुण प्राप्त होता है क्षमा का। जो जितना सामर्थ्यवान होगा वो उतना क्षमादान भी होगा, जो जितना क्रोध करेगा मानिएगा वो बहुत कमजोर है। लगता यह है कि जो जितना टेरर क्रिएट करके रखता है वो उतना सशक्त और बलवान है, लेकिन जो जितना प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जीता है मानिएगा वो उतना अधिक सामर्थ्यवान है। हम जरा सा देखें कि हमारी ये जो सामर्थ्य है, जो कि हमारा अपना स्वभाव है, वो कैसे कमजोरी में तब्दील हो गई है, कैसे वही हमारी कमजोरी बन गई है, कैसे हमारे भीतर ये कषायें प्रवेश करके हमारे जीवन को विकृत करती हैं और हम इन पर कैसे विजय प्राप्त करें। क्रोध हम किन स्थितियों में करते हैं? एक ही स्थिति है, हमारी अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर। यदि हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति होती रहती है हम बड़े शांत और बड़े सज्जन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तब हमारी अपनी वास्तविकता सामने आना शुरू हो जाती है और अपेक्षाएं पूरी न होने पर हमारे भीतर वो कषाय धीरे धीरे बढ़ती है और हमारे जीवन को पूरा नष्ट कर देती है। ये तो बात को मालूम पड़ता है। क्रोध का एक ही कारण है अपेक्षा। जिसकी जितनी ज्यादा अपेक्षाएं वो उतना ज्यादा क्रोध में तुरंत गिर जाएगा। बेटे से अपेक्षा थी 100 से 90 नंबर लाएगा, 80 लाया है, मन करता है कि डांटूं, चार बातें कड़ी सुनाऊं। ये क्या चीज है, ये कैसे आ गया गुस्सा, उसके तो इतने अच्छे नंबर आए हैं। नहीं, आपकी अपेक्षा से कम आए हैं इसलिए गुस्से का कारण है। जहां जहां हमारी अपेक्षा है मानिएगा वहीं वहीं हम क्रोध से और आवेश से युक्त हो जाएंगे और असहिष्णु हो जाएंगे। ये हमें देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितनी अपेक्षाएं रखते हैं। हर आदमी दूसरे से अपेक्षा रखता है अपने प्रति अच्छे व्यवहार की, और जब उसकी वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तब स्वयं अपने जीवन को तहस नहस करता है क्रोध करके। ऐसा देखने में आता है कि नहीं आता है? एक व्यक्ति चला जा रहा है रास्ते से और उसका बेटा साथ में है, और पॉकेट से रूमाल निकाल के मुंह पहुंचते समय उसका नोट बस का नीचे गिर जाता है। बेटा नहीं देख पाता है, वो स्वयं भी नहीं देख पाता, पीछे आने वाला व्यक्ति देख लेता है और 10 रुपए का नोट उठा करके उस सज्जन पुरुष को देता है। तो सज्जन पुरुष उसे थैंक्स देते हैं और बेटे को गुस्से से देखते हैं, क्यों तुम नहीं उठा सकते थे, तुम इतना नहीं देख सकते थे। उससे अपेक्षा है, जिससे अपेक्षा है उसकी तरफ क्रोध है, जिससे कोई अपेक्षा नहीं थी और उसने उठा के दे दिया है तो थैंक्स। थोड़े और आगे बढ़े, अब की बार चश्मा पहुंचने के लिए फिर रुमाल निकाला, फिर से नोट गया, बेटा सावधान था, उसने उठा करके दे दिया, कोई थैंक्स नहीं। वो तो देना ही था, तुम नहीं करोगे तो कौन करे। जिससे अपेक्षा है उसके प्रति जरा भी कृतज्ञता का भाव नहीं अपेक्षा पूरी होने पर, और अपेक्षा पूरी ना हो तो क्रोध का भाव तुरंत उत्पन्न होता है। हमें दिन भर के जीवन में यह विचार करना है कि मैं कहां कहां अपनी अपेक्षाएं आरोपित करता हूं और अपेक्षाओं की पूर्ति होने पर किस तरह से अकृतज्ञ हो जाता हूं, और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर किस तरह क्रोध कर लेता हूं। यह मेरी अपनी कमजोरी है। एक ही कारण मुझे तो समझ में आता है क्रोध का, मेरी अपनी अपेक्षाएं, और उन अपेक्षाओं को मैं दूसरे से पूरा करवाना चाहता हूं। मेरी अपने से कोई अपेक्षा नहीं है, जबकि अपने आप से भी व्यक्ति को अपेक्षा होनी चाहिए कि वो अपने जीवन को अच्छा बनाए। पर हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि दूसरा अपने जीवन को अच्छा बनाए। ये हमारे अपने क्रोध का कारण है। हम लोग क्षमा भी धारण करते हैं, लेकिन वह हमारी क्षमा बहुत अलग ढंग की है। रास्ते से चले जाते हैं, किसी का धक्का लग जाता है, देखते हैं कौन साहब है, अगर अपन से थोड़े कमजोर हैं तो अपनी ताकत दिखाते हैं, क्यों रे देख के नहीं चलता। ज्यादा कमजोर है तो अपने शरीर की ताकत दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन अपन बहुत होशियार हैं, अगर वो बलवान है तो अपन क्षमा भाव धारण करते हैं। सामने वालों को देख रहे हैं कि धक्का देने वाला अगर बलवान है तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं भाई साहब, होता है ऐसा, चलते हैं। एकदम क्षमा, ये मजबूरी में की गई क्षमा है। दुकान पर ग्राहक आया है, वो चीज दिखाओ, देखो साहब ये नहीं, वो चीज दिखाओ, देखो साहब 50 चीजें देख ली और बाद में धीरे से उठ करके कहा फिर कभी आऊंगा, अभी तो कोई पसंद नहीं आया इसमें से। तब भी हमारे अंदर क्रोध नहीं आता, आता है क्या? करेंगे अगर जिस दुकानदार को आएगा क्रोध, दुकानदारी मिट जाएगी उसकी, कोई नहीं आएगा उसकी दुकान पर, क्षमा भाव धारण। ऐसे स्वार्थवश भी हम क्षमा धारण करते हैं अपनी मजबूरी में, और कई बार तो हम क्षमा भाव इसलिए धारण करते हैं कि जिससे हमें सम्मान मिलना शुरू हो। भैया बड़ा क्षमा भाव धारण करते हैं, कितनी बातें इनसे कह लो ये बड़े क्षमावान है, लेकिन डीपर इंटेंशन क्या है ये विचार करना पड़ेगा। किसी सांसारिक आकांक्षा से भर करके भी हम क्षमा भाव धारण करते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी करते हैं, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए भी हम क्षमा भाव धारण करते हैं चार लोगों के बीच। ये सब हमारी सामर्थ्य का प्रतीक नहीं है, ये तो हमारी अपनी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। हम देखें कि क्या हम अपनी इस क्षमा भाव को वास्तव में अपनी क्षमता को बढ़ा करके प्राप्त कर सकते हैं क्या? एक ही चीज है क्या, अपनी अपेक्षाओं को कम करें। पहली चीज, अगर कोई हमारी मजबूरी है हम उसे मजबूरी मानकर स्वीकार करें, हमारे स्वार्थ को हम छोड़ करके फिर वैसा ही व्यवहार करें तो हमारे जीवन में कोई वजह नहीं है कि हमारी अपनी जो वास्तविकता है, जो वास्तविक क्षमा है वो ना आए। हम थोड़ा सा विचार करें इस चीज पर कि क्रोध को हम कैसे जीत सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जैन धर्म से और भगवान महावीर स्वामी से इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जैन दर्शन यहीं जाकर के नहीं रुक जाता, वो ये भी कहता है कि क्रोध आ जाने पर क्या करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन क्रोध आ जाता है अगर तब फिर क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन क्या है? अलग अलग लोगों ने अलग अलग सोल्यूशन दिए हैं। हमारे भीतर क्रोध संभव है आ जाए, लेकिन हम जरा सा